ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन साकार 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साक्षी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है। जो लिंक चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के सामने जो देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, अब नाचक पूरा होता, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग हु बहु रिपीट होगा, ये राज सबको समझा। आपको समझ में आ गया है, ये राज अब आपने सबको समझाना है। ये है आज की मुरली का सार। प्रश्न, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है, क्यों थक गई है? आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन। कहां सतो प्रधान आत्मा थी और कहां तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। हां जी, आत्मा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या आत्मा भी थकती है? आत्मा थकती क्यों है? पहला प्रश्न तो है कि क्या आत्मा थकती है, दूसरा प्रश्न है कि थकती क्यों है? हाँ जी, गुण और शक्ति खत्म हो जाती है, तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी है। तमो प्रधान होने का कारण है माया, गुणों का अभाव, शक्तियों का अभाव। जब आत्मा में गुण और शक्तियों का अभाव हो जाता है तो वो कमजोर हो जाती है और वो अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। जैसे एक पहलवान हो, वो बड़ा बड़ा काम भी कर लेता है जब जवान होता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब उसकी हालत ये हो जाती है कि लास्ट में उसका हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हालत आज हमारी है कि हम भी जब शुरू में आए थे सतो प्रधान थे, हम अपने काम बहुत आसानी से बड़े सहजता से संकल्प के द्वारा कर लेते थे, धीरे धीरे बोल के द्वारा भी करना मुश्किल हो गया, अपने हाथों से करना पड़ा। कहां हम अपने मालिक थे और कहां हम मजदूर बन गए। हमने अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर समझ लिया, शरीर समझने के कारण खुद काम करने वाला समझ लिया, जबकि कराने वाले से हम करने वाले बन गए। अब जब करने वाले बन गए तो हमें थकावट तो होगी, मजदूर को थकावट होती है, सुपरवाइजर को कभी थकावट नहीं होती। बाबा हमें आकर पुनः सुपरवाइजर बना रहे हैं, बच्चे देखो कोई भी काल मेरी मत के विपरीत ना हो जाए। जो मेरी मत के विपरीत काम होगा वो आपको थकाएगा। तो बाबा आकर समझाते, थकती आत्मा है। आपसे कोई सवाल नहीं निकल रहा है तो आत्मा थकती है, आत्मा ही उस सवाल की मजबूरी को समझ रही है। क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है, सवाल निकल नहीं रहा, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, आखिर मैं किताब को फेंक के मारूंगा और मैं छोड़ दूंगा कि मैं काम नहीं कर। कोई भी काम करने के लिए असमर्थता आत्मा को ही थकाती है और आत्मा ही थकती है। ये शरीर कोई थकने वाली चीज नहीं है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये शरीर तो इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, उतना काम करने के बाद ये भी काम करना बंद कर देता है। आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लगातार आप काम कर लेंगे, उसके बाद भी सोचते हो कि मैं ओवर टाइम लगा दूं तो क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी। आपका यदि किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है, आप अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते, आप गिर जाएंगे। आपका शरीर कहता है आप बैठ जा, नहीं बैठोगे तो गिरा देगा ही आपको, आप काम नहीं कर सकेंगे। एक लिमिट तक आप काम कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है कि आत्मा थकती आत्मा, आत्मा ही स्वस्थ है, आत्मा ही बीमार होती है, आत्मा ही तमो प्रदान होती है, आत्मा ही सत्व प्रदान होती है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने के, थकावट मिटाने के लिए क्या समझाते हैं कि तुम आत्मा अब मजदूर से सुपरवाइजर बन जाओ, चेक करने वाले बन जाओ। कोई भी बात ऐसी ना आए जो मेरी श्रीमत के विपरीत, बस फिर तुम कभी थकेंगे नहीं। मेरी श्रीमत पर ही हर बात को, हर संकल्प को आने दो। आपने सोचना भी मेरी श्रीमत के अनुसार है, बोलना भी मेरी श्रीमत के अनुसार है, और हर कर्म करना है मेरी श्रीमत के अनुसार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, रूहानी बाप बैठ बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, तब तो थकेगी थकेगी, रोएगी बैठ कर, रोना पड़ेगा। क्योंकि रावण माना रुलाने वाला, रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावण आ जाता है, माया जगह को खाली करती है, उसकी जगह आखिरी संस्कार आते हैं, उसको रावण कहा जाता है। और जब रावण आ जाता है वो तो रुलाएगा, उसका काम ही रुलाना है। वो ऐसे काम कराएगा लगेगा कि अच्छा है, परंतु दूसरों को भी रुलाएगा और खुद भी रोएगा, डबल रोएगा। एक बार रुलाते वक्त रोएगा, जिसको दुख दिया जब वो वापस दुख रिटर्न करेगा तब भी रोना पड़ेगा। एक बार रोने के लिए ये नहीं था कि एक बार रो लिए, उसके लिए दो बार रोना पड़ता। क्योंकि मेरे को जिस पर गुस्सा आया है, आज मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको दुखी कर दिया, अब वो मेरे से रिटर्न करेगा वो दुख मुझे, मैं अब दुखी हूं इसलिए मैंने उसे दुख दिया, फिर वो मुझे दुख देगा, फिर मैं दुखी होऊंगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि डबल मार पड़ती है। ये रावण है और बाबा डबल सुख देता है। अब आप खुशी से किसी को सहयोग देंगे तो वो भी आपको खुशी से सहयोग देगा, और सहयोग देते वक्त भी वो खुश था, सहयोग लेते वक्त भी खुश। उसने आपको दिया, आपको भी खुशी मिली, आपने उसको दिया, उसको भी खुशी। ये एक बड़ा वंडरफुल पार्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। डबल खुशी मिलती है और डबल ही दुख मिलती है। मैथमेटिकली बराबर ही होता है, जितना आपने लिया है उतना आपको देना है, जितना आपने दिया है उतना आपको लेना है। उनका नाम क्या है? रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। देखो बाकी दुनिया वाले कहते हैं मेरे साथ पिताजी का नाम लिया, आपने उसके साथ श्री नहीं लगाया, मेरा नालायक है। और यहाँ बाबा खुद कहते हैं मेरा नाम क्या है, कुछ नहीं लगाते, खुद कुछ भी नहीं लगाते। और हम भी बड़े सियाने, हमने कभी श्री शिव कहा, कभी श्री श्री शिव कहा, कभी नहीं। परंतु क्या बाबा ने कंप्लेन की कभी कि मेरे साथ आपने श्री क्यों नहीं लगाया, जबकि बताया कि मैं श्री श्री हूँ और जिनको मैं बनाता हूँ वो है सिंगल श्री और तुम अपने साथ श्री नहीं लगा सकते। ये टेक्निकल पॉइंट बाबा ने हम सबको समझाया। मैं हूँ श्री बनाने वाला, इसलिए मैं ही एक हूँ जिसको श्री श्री कहेंगे। और जो मैंने बनाए, जो पवित्र बने लक्ष्मी नारायण, उनको श्री कहेंगे, बाकी और किसी को श्री, क्योंकि देवताओं को कहेंगे श्री। वो बात नहीं है ना, बात परमात्मा की कर रहे हैं कि दुनिया वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया वाले तो मैंने बताया कि देहधारी की कोई भी अपने साथ श्री नहीं लगा सकता। बाबा ने कहा कोई नहीं श्री लगा सकता, क्योंकि कोई तुम्हारे में श्री है ही नहीं। श्री लगाए वो जो श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ होते हैं देवता, देवताओं के साथ श्री लगाया जाता है। श्री माना आर्य भी होता है, आर्य समाज वाले आर्य भी श्री को कहा जाता है। वो कहते हैं अपने साथ आर्य लिखो, यानी आर्य लिखना भी श्री है, श्रेष्ठ है, अपने आप को श्रेष्ठ बताते। परंतु श्रेष्ठ जब है नहीं, लगाने से श्रेष्ठ तो नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए, इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वो अब पूरा हुआ। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी तो क्या करते हैं, तो सभी एक्टर समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब घर जाना है, सबको मालूम होता है। और सारे जिनका पार्ट खत्म हो जाता है वो अपनी ड्रेस बदलना शुरू कर देता है, घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो, जिनको बाप मिला है, नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है। अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि परले होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाए। ये शालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, ये वे है सीट हों, ये है सीट हों। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबर वार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं, ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना है, रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई, नाटक पुराना कहेंगे कहेंगे नहीं। नाटक तो कभी पुराना होता नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। क्यों नहीं होता ये नाटक पुराना? बाकी सारी दुनिया के नाटक पुराने हो जाते हैं, ये नाटक पुराना क्यों नहीं होता? तो हुबहू तो दूसरे नाटक भी होते हैं, एक बार फिल्म देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, चार बार, उसके बाद तो बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे? ये एक एक फिल्म या बस को बार बार देखते रहो। याद नहीं रहता, ये सबसे बेस्ट जो है ना, इसके अंदर विशेषता कि आत्मा एक बार परम धाम गई, सारा कुछ भूल जाए। आत्मा ने शरीर छोड़ा, सारा कुछ भूल जाए। बस किसी किसी को ड्रामा अनुसार याद रह जाता है शरीर छोड़ने के बाद, वरना सब कुछ भूल जाए। ये भूल जाना ही एक ड्रामा के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है, नहीं तो इस जन्म का पति पत्नी अगले जन्म में जाकर माँ बेटा बन जाए, भाई बहन बन जाए, तो उनकी मुसीबत हो जाए कि क्या है। पति पत्नी के रूप में रहें कि भाई बहन के रूप में रहें, माँ बेटे के रूप में रहें, किस रूप में रहें? इसलिए मतलब ड्रामा के अंदर ये बड़ी वंडरफुल बात है कि भूल जाते हैं। मुझे किस जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है ये पार्ट भी भूल जाते। यही प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, भाई जब मेरे को कोई दुख मिल रहा है, मैंने कौन सा कर्म किया था वो बताया तो जाना चाहिए। आप कौन बताएं और किसको बताएं? कौन बताएं और किसको बताएं? क्योंकि ये बात आत्मा ने दी है, आत्माओं ने आपस में अकाउंट बनाया है। अब आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, उस जन्म में तो उसको याद रहता है, अच्छा इसने मेरे से 500 रुपए दिए थे, अब इसने 500 रुपए नहीं दिए, तो याद रहेगा। और तो अगले जन्म में उसे याद नहीं रहेगा, और तो अगले जन्म में वे उन पैसों को तो लेगा, मतलब उस प्रकार का सुख जो दिया है वो सुख उसे याद रहेगा कि मैंने इसे सुख दिया था, अब ये सुख मुझे मिलना है। देने वाला भी याद नहीं रखता, परंतु टाइम अनुसार पार्ट अनुसार उसको एक्यूरेट टाइम पर वो इमर्ज होना है और उसने रिटर्न करना है। ये ड्रामा में नूंद है। जिसको मैंने दुख दे दिया है वो 5000 साल के अंदर अंदर मुझे रिटर्न करेगा, और जिसको मैंने सुख दे दिया है उसने भी सुख रिटर्न करना ही करना। तो ये ड्रामा की विशेषता है, हर एक आत्मा ने जो लिया दिया है वो बराबर करना है, पर तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसे भूल भी जाना है। याद मैंने याद नहीं रहेगा, परंतु कार्मिक अकाउंट बराबर जरूर हो। उस नाटक को हमने एक बार देख लिया सारा याद है, दूसरी बार देख लिया सारा याद है, तीसरी बार देख लिया सारा याद है, जितनी बार देखा उतनी बार वो याद रहता है, इसलिए वो बोरिंग हो जाता है। परंतु ये कभी याद नहीं रहता। मैंने अगले सेकंड क्या करना है ये भी नहीं पता होता, कितनी प्लानिंग करके जाता है, परंतु उसके बाद भी उसे याद नहीं रहता है, उसे याद नहीं रहता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, लॉ है, नियम है। ये याद रहे तो वो ना इधर का रहेगा और ना उधर का रहेगा। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है, बाकी दुनिया पुरानी होती है। बाकी दुनिया क्या हो जाती है? पुरानी होती है। हम एक्टर समूह प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं, सचिव में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने का की बात नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखने में पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, अंत वक्त कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। हमें बिल्कुल एकदम हर बात से बुद्धि को क्या कर लेना है, डिटैच कर लेना है, अलग कर लेना है। जरा भी अटैचमेंट किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, जो कुछ भी संसार के अंदर दिखाई दे रहा है, वो मेरी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। एक बात को याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश, और कोई उपाय नहीं। गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई भी नहीं जानता। गीता में लिखा है मन मना भाव, परंतु उस मन मना भाव का अर्थ कोई भी जानते नहीं, समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तुम विश्व के वारिश अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिश बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कोड़ी से हीरे निसल बन रहे हो, कोड़ी से हीरे निसल बन रहे हो, यहां तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है, तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर, सचिव गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती रहती है, दो कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया, अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं। ये नॉलेज तुमको मिल रही है, ये है नई दुनिया के लिए, नई नॉलेज नई दुनिया स्थापन होती है। करने वाला है बाप, सृष्टि का रचयिता बाप, याद भी बाप को ही करते कि आकर हेवन रचो, सुख धाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते, रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले तो मुख्य बात समझानी है, क्या हमारा बाप कौन, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में भी समृद्धि रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना, ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दोरी की बात रहती नहीं, सभी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के माफिक घर बार छोड़ो, ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों की माफिक घर बार छोड़ो। ये है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग माना परिवार में रहने वाला, और निवृत्ति मार्ग माना सन्यासियों का। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हक योग, तुम घर बार छोड़ते हो, यहां वो बात नहीं है। ये दुनिया है ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब आदि कैसे गंध में रहे पड़े हैं वे थोड़े ही दिखाते हैं। अब जैसे मतलब भारत के अंदर जो 21 देशों का प्रोग्राम हुआ था, बाहर के विदेशी आए तो जो झोपड़ी वाला एरिया था वो मेन रोड के साथ लगता था, तो वहां उसको बहुत सुंदर लाइटों से कवर कर दिया, बाहर से वो झोपड़ियां दिखाई ही ना दे मेन रोड। हाँ, मतलब दुनिया को वो एरिया देखने नहीं देते, उनके लिए रूट वही बनाया जाता है कहीं भी ले जाने के लिए लाने के लिए, जहां वो हमारी यहाँ की गरीबी को देख ही ना। यही सारे देश करते हैं, ये केवल भारत में नहीं किया जाता, ये सारे देशों में ऐसे ही किया जाता। तो सारे जो जाते देखने के लिए बहुत अच्छी दुनिया, वो तो एक बार पैदल चल के देखो तो पता लगेगा कितनी अच्छी दुनिया। ये तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। सरकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहां भी फर्क तो रहता है। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी की, और कोई ईंटों के भी। यहां तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था को, स्टूडेंट की बुद्धि में सभी ही याद रहती है, स्टूडेंट को हमेशा अपनी पढ़ाई याद रहती है, बाप और वर्षा, कि हमें बाप को याद करना है और बाप से क्या वर्षा मिल रहा है वो हमें याद रहता है। ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। तो वे तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, तो तभी तो लाखों हजारों वर्ष पड़े दुनिया भर से कह देते। यहां तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म है। हमारी राजधानी की क्या हो रही है, नोट करने वाली बात है, हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म हो रही है। ये लाइन कितनी क्लियर बताती है कि जो स्थापना हो रही है वो रहेगी, बाकी दुनिया खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सतयुगी स्वर्ग बना रहे हैं, वो रहेगा, बाकी दुनिया खत्म होनी। ये पढ़ाई है ना, बुद्धि में ये याद रहे, हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाते हैं, माया बड़ी प्रबल है, ये बुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं, यहां तो एक ही टीचर। बाकी कॉलेज में, बाकी स्कूलों में बहुत सारे टीचर होते हैं और यहां एक ही टीचर है सारी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाने के लिए। ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, परंतु उन सब को पढ़ाने वाला एक ही बाप। यहां तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर। सुना है कभी कोई नायब टीचर भी होता है? आप में से किसी ने सुना है नायब टीचर भी होता है? हाँ जी, मुख्यमंत्री नहीं, टीचर की बात बताओ, नायब टीचर। हमें दूसरे से क्या मतलब? नायब किसी के साथ लगा हुआ सुना है आपने? नायब तहसीलदार। हाँ जी, नायब तहसीलदार। नहीं नहीं, नायब तहसीलदार सुना है आपने? सुना है ना, एक वही दिखाई देता है तहसीलदार और एक होता है नायब तहसीलदार। इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? अरे नायब किसके साथ लगाए? बड़ा वो हुआ के तहसीलदार बड़ा हुआ? वो तो खाली तहसीलदार है। तहसीलदार बड़ा हुआ? अरे भी नायब जिसके साथ लगा वो बड़ा होगा कि तहसीलदार बड़ा होगा? वो है नायब तहसीलदार, वो है सिर्फ तहसीलदार। छोटा होता है नायब माना उप, ये उर्दू का शब्द है उप तहसीलदार। हिंदी में इसके नायब का मतलब है उप, अंग्रेजी में इसका मतलब है असिस्टेंट। समझ में आ गया? तहसीलदार उर्दू का शब्द है, नायब भी उर्दू का शब्द है, तहसील भी उर्दू का शब्द है। ठीक है, उर्दू के कारण ये उसी प्रकार से चलता आ रहा है, क्योंकि अभी तक भी रजिस्ट्रियां वगैरह सारी उर्दू में है और उर्दू का नाम वही के वही वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। अब नई गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ चेंज करेगी तो करे। तो नायब माना उप, ठीक है, असिस्टेंट। तो टीचर असिस्टेंट टीचर भी होता है। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, तहसील को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया, याद नहीं है मुझे। जो भी कहते होंगे डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। ठीक है, तहसील को जो है ना, क्या बोलते हैं, तालुका, वो भी उर्दू का शब्द है। तहसीलदार ऊंचा होता है भाई जी, तहसीलदार ही ऊंचा होता है, नायब होता है असिस्टेंट तहसीलदार या उप तहसीलदार, हिंदी में उसका उप कहेंगे या असिस्टेंट कहेंगे, सहयोग सह तहसीलदार भी कह सकते हैं, जैसे जो सहयोगी होता है ना, अंग्रेजी में असिस्टेंट ही होता है। हाँ, सहायक तहसीलदार। तो नायब टीचर क्या हो गया, सहायक टीचर, छोटा टीचर। शिव बाबा है बड़ा टीचर और बाकी आप सब हो सहायक टीचर, असिस्टेंट टीचर हो, ठीक है, नायब टीचर। आप सारी हो नायब टीचर, शिव बाबा है टीचर, तो जरूर चाहिए ना असिस्टेंट टीचर, तो चाहिए ना। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेज है, बाकी सब क्या है, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कलप हम सुखी रहेंगे तो ये भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही है ना, बाप स्वर्ग स्वर्ग की, शिव बाबा आकर रचना रचते ही हैं स्वर्ग की, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वे स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जाती पढ़ाई में ध्यान रहेगा, सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असिस्टेंट तहसीलदार हो गया ना वो, तो वो शिव बाबा टीचर है तो हम असिस्टेंट टीचर हैं, आप भी असिस्टेंट टीचर बन गए, तो तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक पढ़ाओगे नहीं, तनख्वाह चाहिए तो पढ़ाना शुरू कर दो। यहां तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके, यहां कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले पीछे चले जाते हैं, कैसा वंदर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो, कैसे पेशेंट को ले आए हो, कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है, ये मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, कोई शूद्र को ले आएंगे तो वे वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रायल चाहिए, तुम बच्चों की चलन भी बहुत रायल चाहिए, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, वहां क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी 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 चीजें होंगी, सत्युग की कोई चीजें यहाँ हो ना सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बांकौरों को रास्ता बताते हैं, सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है, पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक पारलौकिक और फिर अलौकिक, नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते, ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता ही नहीं, ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता ही नहीं, शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ, वो है पारलौकिक बात और ये फिर है ब्रह्मा बाबा अलौकिक बात। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो। किसको देखते हैं सूक्ष्म वतन में? ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा को कहां देखेंगे? देखेंगे, देखेंगे शिव बाबा को परम धाम में। हाँ जी, शिव बाबा को परम धाम में भी नहीं देख सकते, शिव बाबा को यहां भी नहीं देख सकते। सिर्फ ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ सकते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में भी दादी जब संदेश लेने जाती है तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देता है और ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा बोलते। वहां पर जबकि आवाज नहीं है तो वहां पर लिस्ट रीडिंग शिव बाबा क्या कह रहे हैं वो लिस्ट रीडिंग से समझ जाते, या शिव बाबा कुछ चित्र दिखाते हैं जिनके द्वारा समझ जाते। इनको तुम सूक्ष्म वतन में देखते हो, फिर यहां भी देखते हो। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में भी संदेश दिया जाती है, देखती हैं, और यहां पर भी साकार में भी देखते हो। क्योंकि गुलजार दादी ने जब फर्स्ट टाइम देखा ब्रह्मा बाबा को, संदेश लिया ध्यान में जाने के बाद, जो पहले तो सिर्फ ध्यान में जाती थी, कोई संदेश लेकर के नहीं आती थी, कभी कुछ कृष्ण को देख के आए तो कभी कुछ देख के आए तो कभी कुछ देख के आए। फिर जब संदेश का पाठ शुरू हुआ तो यहीं से शुरू हुआ कि उन्होंने देखा कि ऊपर ये बाबा है, फिर बाबा के द्वारा शिव बाबा ने संदेश देना शुरू किया। वहां इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहां भी देखते हो। लौकिक बात तो यहां देखने में आता है, पारलौकिक बात तो परलोक में ही देख सकते हैं। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बात। इस अलौकिक बात को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वे बिंदी है, वे करके अखंड ज्योति या वा ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, सब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वे तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है और कल की दुनिया क्या होगी सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों की मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने, ये बागी रथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। हमको सृष्टि के चक्र का राज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ जी, भाग्यशाली रथ,
क्योंकि कितना श्रेष्ठ रथ है जिसमें शिव बाबा आकर सवार हुए हैं, इसके भाग्यशाली रथ कौन होगा? मेरे शरीर का आधार ले लेंगे तो मेरा रथ भाग्यशाली हो जाएगा ना। शिव बाबा जिसके रथ पर सवार हो कितना भाग्यशाली, उसका नाम भाग्य रथ रखा, भाग्यशाली रथ। परंतु दुनिया वाले समझते हैं कि गंगा को कोई ऋषि था, भागीरथ था, वो जो है ना गंगा को इस धरती पर लाया था, तपस्या की थी उसने, और वो फिर शंकर ने अपनी जटाओं में लपेट लिया। ये आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या थी, पानी की नदी थी या कोई औरत थी जो ऊपर से कूदी और शंकर जी ने अपनी जटा में लपेट ली, बाकी सारी औरत उसके बालों में छुप गई, एक मुंह बाहर दिखाई देता। ये कोई गुड़िया का चित्र, गुड़िया की कोई गुड़िया बना करके अंदर डाल दी और मुंह बाहर लेके बैठ गई, कितना छोटा रूप रहा होगा कोई समझ नहीं पाता। सारा दिन गंगा को सिर में उठाए उठाए घूमता रहता है, बेचारे का सिर का क्या हाल होगा कभी किसी ने सोचा नहीं। बस बिठा दी तो बिठा दी, चित्रकार ने भी बिठा दिया, मुंह बाहर निकाल दिया, पानी मुख से बाहर आ रहा है, कहां से आएगा पानी, कैसे बुद्धू बनाया? और हम कितने समझदार थे कि बुद्धू बने रहे। हाँ जी
भाई, ऐसा तो है कि मुख के पास भागीरथ का मंदिर भी है और वहाँ पूजा करते
भाई जी, जब गपोर कहानियां लिख दी जाती है तो उस पर फिल्म बनाना कोई मुश्किल रहता है क्या? सारा कुछ झूठा है। पहले कहानी लिखी गई फिर बनाए गए भाई जी।
अच्छा,
मैं आपको गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। गुड़गांव में कुछ अंग्रेज आए रिसर्च करने के लिए कि जो गुरु द्रोणाचार्य का गांव है वहाँ सारे गुड़गांव में घूमने पर उनको गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि गुरुग्राम द्रोणाचार्य का यदि है वहाँ कोई निशानी तो होनी चाहिए, कोई भी निशानी नहीं मिली उनको, ये ऐसे गुरुग्राम रख दिया है ना। तो गुरुग्राम का दिमाग जागा तो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज बना और यहाँ पर राजीव चौक के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य पार्क बना, वहां पर आपने देखा होगा आजकल उसको हटा दिया गया है अजय चौक बनने के कारण, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति रखी हुई थी और पांचों पांडव वहां पर फेंक रहे थे, तो मेरे ये बाद में निशानियां रखी गई, वरना गुड़गांव में इससे पहले कोई निशानी नहीं थी। जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की कोई निशानी नहीं थी, उसका नाम थानेसर ही था, उसका नाम कोई कुरुक्षेत्र ही नहीं था, बाद में उसका नाम कुरुक्षेत्र रख दिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रख दिया, वहां पर वो क्या बोलते हैं ये गीता का जो है ना ज्ञान देने वाला बना दिया सारा कुछ। हाँ जी, ये हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा अलग हुआ, पंजाब और हरियाणा जब अलग हुए तब इन्होंने कुरुक्षेत्र नाम दिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोली और वहां पर ये बनाया गया जो गीता का ज्ञान देने का जो थानेसर, थानेसर वहां पर एक तालाब है उसका नाम थानेसर तालाब है, वो थानेसर था, उस जगह का नाम भी थानेसर था, बाद में उसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। इतनी बड़ी गीता का कहीं पहचान ही नहीं है। हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं, अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पार बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है, विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बम्स आप बना कर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना, बम्स से ही इतना काम होगा फिर जो फिर मनुष्यों की लड़ाई की दरकारी में, बम से इतना बड़ा काम होगा कि कोई लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, सेना कम होती जाएगी, बम फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे क्योंकि काम ही नहीं रहेगा, नौकरी नहीं देगी। जैसे एआई आ गई है, अपना इंटेलिजेंस, एडवांस इंटेलिजेंस, तो उससे क्या होगा, कितनों को नौकरियां छूट गई और आगे छूटनी छूटनी है, छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना, ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, सिपाहियों की जरूरत नहीं, जब हमारा काम एक मिसाइल से चल रहा है हम इतनी सेना भर्ती क्यों करें, फौज की जरूरत क्या है। अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे, खून नायक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए, शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है, अगर बात की याद नहीं तो जरूर बुद्धि में, बुद्धि कहाँ और भटकती है, कोई और याद है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बात की याद नहीं ठहरती तो चक्र को स्मरण करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बात की दिल पर भी नहीं चल सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं, कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और ही बाप के पास ले आते हैं तो बाप देखकर खुश होते हैं, ये नए टीचर बहुत अच्छा है। जो बाप का बनाकर बाप के पास ले आता है वो नए टीचर बहुत अच्छा है। अच्छा, नीचे नीचे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला वाले बाप को याद रहे, बाप की याद रहे, खाते पीते सब काम करके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरी पन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र कुछ भक्त, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन मिला है भाई आपको, इंजेक्शन मिला है अशरीरीपन का इंजेक्शन, बाबा ने इंजेक्शन, हाँ जी, हाँ बाबा दे रहा है, आज समझ लो इस इंजेक्शन को, अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा लो। जब बुद्धि में व्यर्थ बातें बहुत ज्यादा चलती हो, नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा चलते हो, तो दुनिया वाले ऐसे डिप्रेशन वाले व्यक्ति को इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसके विचार चलना बंद हो जाए। तो ऐसे बाबा कहते वो स्थूल शरीर को इंजेक्शन लगाते हैं, तुम ये आत्मा को इंजेक्शन लगा दो। ठीक है, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। अब संकल्प चलाना बंद। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, शायद एकाग्रता एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते तो, देकर फिर ले लेते, दे तो देते हो बाबा, आज से जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, फिर अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हो, तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से स्लोगन है, अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने आप को समझो कि मैं पूर्वज आत्मा हूं और इन सब आत्माओं का मुझे परमात्म डायरेक्शन पर कल्याण करना है, तो ये रहम करना है उनके ऊपर। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हैं। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल तेज पर रहे। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।